पृष्ठ संख्या 252। सीसीपी की नीतियाँ, तरीके और कार्यक्रम। स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सीसीपी। 1927 ईस्वी में शंघाई और कुआंगचोउ में मजदूरों के विद्रोहों की असफलता तथा प्रथम संयुक्त मोर्चे की विघटन के पश्चात सीसीपी ने कृषक क्रांति की नई नीति अपनाई, जिसकी प्रेरणा उन्होंने हुनान और कुआंगतुंग में मिली। इस नीति के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। क, चीन में क्रांति गांवों से शुरू होकर शहरों तक पहुंचेगी, न कि शहरों से गांवों तक। ख, सीसीपी सर्वहारा वर्ग की पार्टी होने की बजाय किसानों की पार्टी होगी। तथा ग, चीन में राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन का आधार किसान राष्ट्रीयता, पीजेंट नेशनलिज्म होगी। क्रांति को नेतृत्व देने वाली सामाजिक शक्ति के रूप में कृषक वर्ग की पहचान माओ के लेखों, विशेष तौर पर 1926 ईस्वी में लिखे गए लेख हुनान में कृषक आंदोलन पर रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन द पीजेंट मूवमेंट इन हुनान ने कराई। इस रपट में भी घोषणा की कि बहुत जल्द चीन के केंद्रीय दक्षिण और उत्तरी प्रांतों में कई करोड़ किसान का एक ऐसे बाउंडर की तरह उठना होगा, जिसकी शक्ति इतनी भयावह होगी कि बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे नहीं रोक पाएगी। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम इन चाइना, सेंट्रल, साउदर्न एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस सेवरल हंड्रेड मिलियंस पीजेंट्स विल राइज लाइक माइटी स्टॉर्म, लाइक ए हरिकेन, ए फोर्स सो स्विफ्ट एंड वायलेंट डेट नो पावर हाउ एवर ग्रेट विल बी एबल टू होल्ड इट बैक। नानछांग का विद्रोह, जिसे साम्यवादी सेना की शुरुआत हुई, तथा माओ के नेतृत्व में हुए शरद ऋतु फसल विद्रोह, ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग जैसे शुरुआत के आंदोलनों को कुओमिंतांग की सेनाओं ने कुचल दिया। कुआंगतुंग प्रांत के हाइफंग तथा लुफंग जिलों में, जहां फंग फाए 1923 ईस्वी के किसानों के बीच काम कर रहे थे, किसान आंदोलन कुछ अधिक समय तक चले। दिसंबर 1927 ईस्वी में साम्यवादियों ने कुआंगचोउ पर कब्जा करके कम्यून की स्थापना करने का प्रयत्न किया, परंतु इस बार भी कुओमिंतांग की सेनाओं ने उन्हें पराजित कर दिया। माओ तथा जहूद भागकर चिंग खानसांग पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और मजदूरों की सेना का प्रथम दल, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट्स आर्मी का गठन किया, किसानों और मजदूरों की सोवियतों की स्थापना की तथा ग्रामीण सुधार लाने के प्रयास किए। 1929 ईस्वी में कुओमिंतांग के सेनाओं ने इसे घेर लिया, तो चियांगसी चीनी सोवियत गणराज्य का केंद्र बना, जिसका अध्यक्ष माओ तैतुंग को बनाया गया। चिंग खांगसान में जो कृषक क्रांति शुरू हुई थी, चियांगसी सोवियत ने उसे जारी रखा। अपनी रचनाओं, चीन में साम्यवादी राजनीतिक शक्ति का अस्तित्व क्यों रह सकता है? वाई इज डैट रेड पॉलिटिकल पावर कैन एग्जिस्ट इन चाइना। चिंग खांग पहाड़ियों में संघर्ष, द स्ट्रगल इन द जिंग खांग, तथा एक छोटी सी चिंगारी भीषण आग लगा सकती है। ए सिंगल स्पार्क कैन स्टेट ए प्रेरी फायर। में माओ तत्तुंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीनी क्रांति की चारित्रिक विशेषता होगी सशस्त्र कृषक संघर्ष, जिसकी प्रमुख शक्ति किसान होंगे। 1933 ईस्वी में माओ ने ग्रामीण इलाकों में वर्गों की पहचान कैसे की जाए, हाउ टू डिफ्रेंशिएट द क्लासेस इन द रूरल एरियाज नामक लेख में ग्रामीण चीन के विभिन्न वर्गों और समूहों की पहचान स्थापित की। सर्वप्रथम जमींदार वर्ग के सदस्य थे, जो किसानों का शोषण करते थे और इसलिए वे क्रांति के दुश्मन थे, जिनका उन्मूलन किया जाना था। अन्य दूसरे वर्ग थे अमीर किसान, मध्यवर्गीय किसान तथा गरीब किसान। आरंभ में तो सीसीपी ने जमींदारों और अमीर किसानों के साथ साथ मध्यवर्गीय किसानों से भी जमीन छीनकर गरीब किसानों में वितरित की, परंतु बाद में क्रांति की सफलता को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्गीय किसानों को भी क्रांतिकारी वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। पृष्ठ संख्या 254। चिंग खांगसान में अमीर किसानों की भी सारी जमीन छीनकर गरीब किसानों में वितरित कर दी जाती थी, पर चियांगसी में 1931 ईस्वी में नए कृषि कानून के पारित हो जाने के पश्चात केवल जमींदारों की ही सारी जमीन छीनी जाती थी। अमीर किसान यदि बिना मजदूरों के अपने खेतों में काम करना चाहते तो कुछ जमीन अपने पास रख सकते थे। माओ तैतुंग ने ऐसा क्रांति के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने की दृष्टि से किया था। दरअसल इस भूमि कानून का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि जब्त की गई जमीन को गरीब किसानों के बीच बांटकर मध्यवर्गीय किसानों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। साम्यवादी सेना ने इस कृषक क्रांति के विभिन्न आयामों को कार्यान्वित करने में बड़ी भूमिका निभाई। सीसीपी ने साम्यवादी सेना को राजनीतिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्रांति के प्रति वचनबद्ध बनाया और उसे किसानों के साथ निकट संबंध स्थापित करने पर प्रेरित किया। साम्यवादी सेना की गतिविधियों को निर्धारित करने वाला सिद्धांत था, साम्यवादी सेना युद्ध करने के लिए युद्ध नहीं बल्कि लोगों के लिए युद्ध करती है। लोगों को संगठित करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए तथा उन्हें एक क्रांतिकारी शक्ति की स्थापना करने में मदद करने के लिए। द रेड आर्मी डज नॉट मेक वार फॉर द सेक ऑफ वार, बट फॉर द पीपल टू ऑर्गेनाइज द पीपल, आर्म द पीपल टू हेल्प द पीपल टू एस्टेब्लिश रिवोल्यूशनरी पावर, टू एस्टेब्लिश रिवोल्यूशनरी पावर। साम्यवादी चौकियों में सामान्य सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ स्वैच्छिक सैन्य संगठनों तथा आत्मरक्षक संगठनों की भी स्थापना की गई। 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले ग्रामीणों को साम्यवादी रक्षकों के रूप में संगठित किया गया। इन संगठनों ने साम्यवादी रक्षकों के रूप में संगठित किया गया। इन संगठनों ने साम्यवादी सेनाओं की गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई। अपने इलाके के ज्ञान के आधार पर इन्होंने साम्यवादी सेना की काफ़ी मदद की और उसे महत्वपूर्ण सूचनाएं, खाना, यातायात तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई। अपने से बड़ी और मजबूत सेनाओं से लड़ने के लिए साम्यवादी सेना ने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। यदि दुश्मन आक्रमण करता है, पीछे हट जाओ। यदि दुश्मन पीछे हटता है, पीछा करो। यदि दुश्मन रुकता है, उसे तंग करो। यदि दुश्मन पुनर्गठित होता है, बिखर जाओ। इफ द इनेमी अटैक्स रिट्रीट, इफ द इनेमी रिट्रीट्स परस्यू हिम, इफ द इनेमी स्टॉप्स हरास हिम, इफ द इनेमी रिग्रुप्स डिस्पर्स। इस तरह की गैर पारंपरिक युद्ध नीति स्थानीय लोगों की सहायता के बिना सफल नहीं हो सकती थी। सोवियतों, साम्यवादी सेना, रक्षकों, अर्धसैनिक बलों तथा कृषक संगठनों ने साम्यवादी चौकियों में एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को आधार प्रदान किया। उन्होंने एक ऐसे सरकार की स्थापना की जो आम जनता द्वारा चुनी जाती थी। एक नई भूमि व्यवस्था लागू की गई जिसके अंतर्गत किसान न्यायोचित मात्रा में भूमि रख सकते थे। कालाबाजारी, जुआ, वर्गीय तथा धार्मिक दमन और शोषण जैसे सामाजिक रोगों से जनता को मुक्ति दिलवाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। इन सब के कारण गरीब किसानों को वास्तविक न्याय और स्वतंत्रता का वह स्वाद मिला जो उन्हें इससे पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। 1930 ईस्वी और 1933 ईस्वी के बीच चियांग चियेसरा ने साम्यवादियों के विरुद्ध पांच घेरा अभियान, कैंपेन ऑफ इंसर्किलमेंट किए। साम्यवादी चौकियों पर उनकी आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई। परिणामस्वरूप साम्यवादियों को चियांगसी छोड़ना पड़ा और इसी के बाद ऐतिहासिक लंबी यात्रा लॉन्ग मार्च शुरू हुई, जो चीनी साम्यवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि दिशा, नीतियों तथा मंजिलों के संबंध में काफ़ी आंतरिक विवाद था, पर मार्च 1936 ईस्वी तक जब सेना की विभिन्न टुकड़ियां उत्तर शांसी में एकत्रित हुई, माओ तैतुंग सीसीपी के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे। लंबी यात्रा केवल सेनाओं की यात्रा नहीं थी बल्कि बच्चों और महिलाओं सहित आम जनता की यात्रा थी। 8,000 मील लंबी यात्रा में यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों के साथ साथ जियांग चियेसरा की सेनाओं के हमलों का भी सामना करना पड़ा। यात्रा की समाप्ति पर सीसीपी ने स्वयं को कुओमिंतांग की सेना के विरुद्ध सुरक्षित पहाड़ियों में स्थापित कर लिया। यह स्थिति जापान के विरुद्ध युद्ध में भी महत्वपूर्ण थी। लंबी यात्रा की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इस कठिन यात्रा को पूरा करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत और समर्पित शक्ति के रूप में उभरे, जिन्होंने चीनी साम्यवादी आंदोलन को अंतिम विजय तक पहुंचाया। माओ तैतुंग, जहूद, लिन पियाओ तथा चोउ अनलाय जैसे नेताओं के अलावा हजारों लोगों की इस यात्रा से अनेक प्रकार के मानवीय अनुभव हुए और उनकी परेशानियां बर्दाश्त करने की क्षमता काफ़ी बढ़ी। यात्रा के दौरान भीषण परिस्थितियों में इन लोगों को बूढ़ों, बीमारों, महिलाओं और बच्चों की देखभाल की, जिससे चियांगसी के जमाने में शुरू हुई उनकी जनसेवा की शिक्षा मुकम्मल हुई। इस यात्रा ने साम्यवादियों का परिचय दूर दराज के आदिवासियों तथा नए क्षेत्रों से करवाया, जिससे उन्हें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक शिक्षा मिली। पूरी यात्रा के दौरान सीसीपी आपसी युद्ध को समाप्त करके एक जापान विरोधी संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए भी प्रचार करती रही। इस बात ने सीसीपी तथा साम्यवादी सेना को देशभक्त तथा न्यायप्रिय शक्ति के रूप में स्थापित करने में काफ़ी मदद की। माओ तेतुंग ने दिसंबर 1935 ईस्वी में जापानी साम्राज्यवाद विरोधी चाले टैक्टिक्स अगेंस्ट जापानीज इंपेरियलिज्म शीर्षक से एक निबंध लिखा। 1937 ईस्वी में उन्होंने चीन के क्रांतिकारी युद्ध की रणनीति की समस्याएं प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेटजी इन चाइना रिवॉल्यूशनरी वार नामक निबंध लिखा। 1937 ईस्वी में उसने जापानी आक्रमण के दबाव में नीतियाँ उपाय एवं विचारधाराएं द पॉलिसीज मेजर्स एंड परस्पेक्टिव ऑफ कम्बैटिंग जापानीज इन्वेजन और 1938 ईस्वी में उन्होंने जापान के विरुद्ध छापामार युद्ध की नीतिगत समस्याएं जैसे निबंध लिखे। इन रचनाओं में उन्होंने साम्यवादियों की एक ऐसे शत्रु के खिलाफ लंबी लंबी लड़ाई लड़ने की नीति पर प्रकाश डाला जो उनसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। माओ की इस युद्ध नीति का एक आवश्यक पहलू आम जनता का विश्वास जीतना था एवं साथ ही आम जनता एवं सैनिकों के बीच के विभेद को समाप्त करना था। उन्होंने इस युद्ध को एक वास्तविक जनयुद्ध का स्वरूप देना चाहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि माओ के अनुसार साम्यवादियों का वास्तविक लक्ष्य एक नए चीन का निर्माण करना था, न कि युद्ध में विजय। अतएव एक आज़ाद किस्म के छापामार युद्ध के अलावा साम्यवादियों के लिए जापानियों के खिलाफ जीती गई भूमि पर चौकिया स्थापित करना आवश्यक माना गया। जापानियों से जीती गई भूमि पर प्रजातांत्रिक सरकारें स्थापित की गई एवं एक नए समाज की स्थापना की गई जिसमें स्थानीय निवासियों के जीवन के सभी पहलुओं में आमूल चूल परिवर्तन लाने की चेष्टा की गई। 1941 से 43 की ईस्वी के काल की कुछ कठिनाइयों के बाद 1944 ईस्वी में स्थितियां साम्यवादियों के अनुकूल होने लगी। किसानों की सेना में वृद्धि की गई एवं साम्यवादियों ने आखिरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। 1945 ईस्वी तक जनसेना पीपुल्स आर्मी में सैनिकों की संख्या बढ़कर 9,10,000 हो चुकी थी। किसानों की सेना की संख्या 22 लाख हो गई एवं सुरक्षा हेतु बनाई गई सेना में 1 करोड़ सैनिक हो गए। 19 ऐसे आज़ाद क्षेत्र स्थापित किए गए जिनमें 9,55,00,000 व्यक्ति निवास करते थे एवं जो 9,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। साम्यवादियों की जनसेना ने अधिकांश बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। संचार के साधन एवं बंदरगाह जापानियों के कब्जे से छुड़ा लिए गए। चीन एवं सोवियत संघ के बीच अगस्त 1945 ईस्वी में मैत्री संधि हुई। इसके फलस्वरूप साम्यवादी सेना ने तुरंत जापानियों के खिलाफ एक नया युद्ध प्रारंभ किया एवं 3,15,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को जापानियों के कब्जे से आज़ाद करवा दिया। इसके फलस्वरूप 1,87,12,000 चीनियों ने स्वतंत्रता की सांस ली। साम्यवादी सेना के कब्जे में 190 शहर भी आ गए। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा अणुबम गिराए जाने के साथ ही चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद की स्थिति पोस्ट वार सिचुएशन। चीनियों की पराजय के बाद चीन को एक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा जिसने न केवल चीन के भावी शासकों का निर्धारण किया बल्कि करोड़ों चीनियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि क्यों कुओमिंतांग की पराजय हुई एवं वह क्या कारण थे जिनकी वजह से चीनी साम्यवादी सफल हुए। वस्तुतः साम्यवादियों के साथ चीनी जनता सही अर्थों में लड़ रही थी क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा ही वह अपने समाज में मूलभूत परिवर्तन ला सकते थे। इसी समय मुद्रास्फीति एवं वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने कुओमिंतांग द्वारा शासित क्षेत्रों में एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि ये क्षेत्र पूरी तरह से गृह युद्ध में लिप्त हो गए। दूसरी ओर साम्यवादियों ने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में जमींदारों के खिलाफ अभियान चलाए। इन जमींदारों ने जापानियों का साथ दिया था जिसके लिए ग्राम सभाओं में उनकी व्यापक निंदा की गई। 1946 ईस्वी में एक जन अभियान का नेतृत्व साम्यवादियों ने किया जिसका लक्ष्य न केवल लगान एवं सूद की दर को कम करना था बल्कि गरीब एवं मध्यवर्गीय किसानों के पूर्व कर्जों को माफ करवाना भी था। मई 1946 ईस्वी में साम्यवादियों ने यह नारा दिया कि भूमि जोतने वालों की संपत्ति है, लैंड बिलोंग्स टू द टिलर्स। इस प्रकार चीनी जनमानस साम्राज्यवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद अब एक दूसरे प्रकार की लड़ाई में लगा चुका था जिसका उद्देश्य एक बेहतर समाज की स्थापना करना था। 1947 ईस्वी के वसंत में जन मुक्ति सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लिन पियाओ के नेतृत्व में कुओमिंतांग की सेनाओं के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी। साम्यवादियों ने मंचूरिया को जीत लिया। कुओमिंतांग सेनाएं वस्तुतः इस समय तक केवल नगरों तक सीमित रह गई थी। 1947 ईस्वी के अंत तक साम्यवादियों ने हपेई, सांतुंग तथा सांसी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। सितंबर 1947 ईस्वी के आते आते उन्होंने कुओमिंतांग सेना के चौथाई हिस्से को पराजित कर दिया था। जापानियों ने कुओमिंतांग को पराजय के समय अपने कब्जे के सारे औद्योगिक संस्थान एवं आर्थिक संस्थान सौंप दिए थे। निष्कर्ष था, उस समय चीन के चार परिवार ऐसे थे जो चीन के समग्र औद्योगिक पूंजी के 70 से 80% भाग के स्वामी थे। ये परिवार राष्ट्रीय कुओमिंतांग सरकार के साथ मिलकर ऐसे प्रक्रिया में लगे थे जो कि पूरी चीनी आर्थिक व्यवस्था को अमेरिका के ऊपर निर्भर बना देती। नवंबर 1946 के गृह युद्ध के समय भी कुओमिंतांग सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को उदार बना दिया ताकि अमेरिका की वस्तुओं की बिक्री चीन में आसानी से हो सके। उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापारिक संधि भी की। फलस्वरूप अमेरिकी चीन के विदेशी व्यापार पर अपनी पकड़ बनाने में सफल हुए। चीन अपने समग्र आयात में 51% एवं समग्र निर्यात के 57% के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गया। अमेरिका ने कुओमिंतांग सरकार की मदद से तमाम अवैध आर्थिक सुविधाएं प्राप्त की। इस प्रकार चीनी आर्थिक व्यवस्था का अमेरिकी औपनिवेशीकरण हुआ। इसके फलस्वरूप चीनी पूंजीपतियों का एक बड़ा हिस्सा साम्यवादियों का समर्थक हो गया। साम्यवादियों द्वारा दिए गए चीन छोड़ो के नारे ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अमेरिकी सेना को चीन से बाहर निकाले जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। 1937 से 1947 ईस्वी के दशक में जनमानस के द्वारा झेली गई आर्थिक कठिनाइयों एवं भूमिहीन किसानों के विद्रोह ने भी साम्यवादियों के हाथ मजबूत किए। चीनी साम्यवादी दल द्वारा शासित क्षेत्रों में रह रही चीनी जनता की बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति ने भी जनता को कुओमिंतांग के विरुद्ध किया। इन सब कारणों से साम्यवादी कुओमिंतांग के विरुद्ध 1949 ईस्वी में निर्णायक विजय प्राप्त करने में सफल रहे। साम्यवादियों ने अपनी विजय को जन प्रजातांत्रिक क्रांति का नाम दिया। उनके अनुसार इस क्रांति ने चीन को समाजवाद के पथ पर अग्रसर किया।